ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सब लोग बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के 15 मार्च के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि संध्या जागृति में आप जागरूक रहेंगे। उम्मीद अच्छी है ना? हरे कृष्णा। जिन्हें जागृति में कष्ट है वो खड़े हो जाएंगे। मंजूर? हरे कृष्णा। लेकिन आज का विषय बहुत रोचक है वैसे, इसलिए नींद आने की संभावना कम है, क्योंकि तो होली का मौसम है, सब जगह रंग उड़ रहे हैं, सब जगह आनंद हो रहा है। तो इसकी कहानी ऐसी है, कि बरसाने में बसंत पंचमी से होली आरंभ होती है, जो इस साल 14 फरवरी को शुरू हुई। बसंत पंचमी, बसंत ऋतु का आरंभ होता है, नए नए फूल खिलते हैं, पंछी नई नई आवाज़ में वातावरण को भर देते हैं। तो वो 14 फरवरी को इस साल शुरू हुआ था और चलेगा 25 फरवरी तक, 25 मार्च तक, सॉरी 23 मार्च को पूर्णिमा धूलिवंदन, फिर 24 मार्च को नंदगांव का होरंगा और 25 मार्च को बलदेव जी का होरंगा, तब जाकर ये होली का उत्सव समाप्त होता है। तो हर रोज ब्रज में वसंत पंचमी से रंग उड़ता है। तो ये रंग क्या चीज़ है, किसी को पता है? ये रंग जो है वो राधा और कृष्ण के बीच में जो दिव्य प्रेम है उसको प्रकट करने का एक माध्यम है। जितने विविध प्रकार के रंग होते हैं उतने विविध प्रकार के प्रेम के संबंध होते हैं, विविध प्रकार की प्रेम की भावनाएं होती हैं। इतना विविधतापूर्ण उत्सव है ये। अपने हृदय के कोमल मृदुल भावनाओं को प्रकट करने के लिए कोमल फूलों के रंगों को निर्माण करते हैं। कोई ऑयल पेंट और केमिकल का रंग नहीं होता है इसमें। जो दिव्य फूल खिलते हैं भगवान के धाम में, उन फूलों का अर्क निकाला जाता है, सुगंधित अलग अलग रंग का, और अबीर और गुलाल भी होता है उसके अंदर अलग अलग रंग का। तो कभी झूला झूलते हुए रंग पंचमी होती है, झूले उत्सव में रंगोत्सव होता है। कभी वो कल शनिवार को जो एकादशी आएगी उसका क्या नाम है मालूम है आपको? क्या नाम है? रंग भरने एकादशी। ये सब केवल ब्रज में होता है और कहीं नहीं होता है, बाकी जगह अलग नाम है, यहाँ पर रंग भरने एकादशी। आनंद है बहुत यहाँ पर। तो दुर्भाग्य से कलयुग में ये सारे दिव्य जो उत्सव हैं उसका विकृत स्वरूप दिखने को मिलता है। ऑयल पेंट लगाते हैं, कोई कुछ केमिकल लगाते हैं, इसमें चमड़ी ख़राब हो जाती है। लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए कोई बहाना मिल जाता है, छुप छुप के कोई कुछ गलत गंदे पानी का फुगा मार देते हैं। धूलि वंदन का मतलब क्या होता है? धूलि वंदन यानी ब्रज रज को वंदन करके उसको लगाया जाता है एक दूसरे को। तो ये लोग गटर का कीचड़ निकाल के फेंकते हैं सबके ऊपर। हाँ, कितना विकृत स्वरूप हो गया उसका। और जो बच्चे हमारे देख रहे हैं उनको लगेगा यही उत्सव है, ऐसा ही होना चाहिए, तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो, है ना। लेकिन वास्तविक रूप क्या है? वो राधा और कृष्ण के बीच में जो दिव्य प्रेम संबंध है उसको प्रकट करने का एक माध्यम है वो। इतना तो हृदय का कोमल और मृदुल और दिव्य प्रकट्य है वो भाव का। और हमारे यहाँ पर ऐसी रीति है कि बुजुर्गों को चरणों में रंग लगाते हैं। जैसे जब हम जाते हैं मंदिर में, समझो जैसे हम समझो मुखारविंद में गए, तो वहाँ पर श्री कृष्ण गिरिराज जी का मुखारविंद है, लेकिन उनको पूरे बना देते हैं, वो चरण भी बना देते हैं उनको। तो हम जाकर वो चरण पे रंग अर्पण करते हैं और प्रणाम करते हैं, और उनके चरणों का रंग लेकर हम पे सर पे लगाते हैं। जैसे दशहरे के दिन जो होता है ना, वो पत्ते बांटते हैं ना, वो तो वो प्रणाम करके देते हैं उसको, बड़े बड़ों को, मित्रों को आलिंगन देते हैं, और छोटे हमको प्रणाम करके हमको देते हैं पत्ता। इतना उच्च भाव है उसके अंदर, वही होली का भाव है। बुजुर्गों को चरणों में रंग लगाना है तो हाथ में रंग लगाना है, और मित्रों को गाल में लगाना है प्रेम से, लेकिन मस्ती नहीं करना है उसके अंदर कोई। तो इतिहास क्या कहता है कि जब ये अष्टमी आती है फाल्गुन की, फाल्गुन महीने की अष्टमी आती है, तो नंदगांव से एक पांडे भेजा जाता है। पांडे इज अ रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रतिनिधि है नंदगांव के नायक का, नंदगांव में जो नेता है ना उसका प्रतिनिधि है वो पांडे। वो होली का निमंत्रण लेके जाता है बरसाने, और सखियों को निमंत्रण देता है कि कल हमारे नेता आने वाले हैं, आपको भी निमंत्रण दिया है, तो कल आएंगे होली खेलने के लिए। ये कब होता है? अष्टमी के दिन होता है। फिर अष्टमी के दिन क्या, जब भी वो पांडे आता है तो सब सखियाँ उसको घेर लेती है, और सखियाँ घेर कर उसको पानी से धो डालती है। उतने में वहां से राधा रानी आती है, वो देखती है बेचारा अकेला पांडे। हाँ, पाणे, पाणे कहते हैं उसको, पाणे, अकेला पाणे, और इतने सारे सखियाँ घेर कर उसको, मतलब एक तरह का आतंक मचा रही है उसके ऊपर। तो राधा रानी बड़ी भोली और बड़े दयालु हैं, और कहते हैं अरे पाणे को क्यों तकलीफ कर दे रहे हो, वो तो केवल केवल नोता देने को आया है, भिगाना का तो उसको है जो कल आएगा, इसको क्यों परेशान करते हो। तो बड़े प्रयत्न से सब सखियों के चंगुल से पाणे को छुड़ाती है वो। और आगे सुनिए, हाँ, बड़े प्रेम से उसको घर ले जाती है अपने, और उसके भीगे हुए रंग के कपड़े ना वो निकाल कर उसको नए अच्छे वस्त्र पहनने को देती है। पहले तो गरम गरम पानी से तेल मालिश करवा के स्नान कराने की व्यवस्था करती है, फिर नए वस्त्र देती है। अभी वो राज कन्या है ना, वो वृषभानु महाराज की कन्या है वो, तो कितने ऊंचे वस्त्र देती है उनको। फिर पंच पकवान में भोजन कराती है उसको, फिर दक्षिणा देती है क्योंकि तो पांडे में ब्राह्मण है ना, माफी मांगती है कि हमारे सखियां जरा नादान है, वो तुमसे गुस्सा के कर बैठी है, जरा माफ करना। पालकी में बिठा के भेजती है उसको अपने घर पे उपहार और दक्षिणा के साथ। फिर अगले दिन नवमी के दिन क्या होता है, जब उसको क्या कहते हैं यहां पर, क्या कहते हैं यहां पर, रंगीली होली। उस दिन नंदगांव से जुलूस निकलता है, बड़ा सुंदर वर्णन दिया उसका। उसमें सारी देवी देवताएं भेष बदल कर आते हैं, कुछ ऐसे ही आते हैं, कुछ भेष बदल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा जी चार मुख वाले ब्राह्मण बनकर आते हैं, शिव जी पांच मुख वाले आते हैं, सुखदेव जी नग्न अवस्था में आते हैं, उनको गोद में लिया पूर्णमासी माता ने, सब सुंदर वर्णन आया है। सप्तऋषि उसके अंदर है, सारा देवताओं का समूह है। और ऐसा भी हमने सुना है कि इसमें ब्रह्मा जी अपनी पत्नी को बताना भूल गए कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो भाव में चले गए वो, तो ब्रह्माणी ने झगड़ा किया ब्रह्मा जी के साथ, अरे अच्छे अच्छे मौके पे आप जाते हो मुझे बोलते नहीं हो, हाउ यू कैन टेल मी, हाँ वो बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे सुंदर उत्सव बार बार नहीं आते हैं, और आप हमें बताए बिना चले जाते हो। आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो ये जुलूस में ऐसा सुंदर वर्णन आता है कि शुक नारद ब्रह्मा शिव जी सारे सप्तऋषि सभी देवता लोग देवियाँ ब्राह्मणी बनकर नाचते हुए उस जुलूस में जा रहे हैं और सबके बीच में दूल्हा बनकर हमारे कन्हैया जी जा रहे हैं ऐसा फुल्ली इक्विप्ड। कैसा? इधर इधर पिचकारी, इधर कलर कलर का सूखे रंग का, इधर पिचकारी हाथ में पिचकारी बंसुरी सब पूरा होली का बोलते ना नायक बन के जा रहे हैं। वो गीत गाते हुए जा रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं उसके अंदर। पूरा लंबा वर्णन है उसका, मेरे को बताऊंगा नहीं यहाँ पर, बहुत लंबा वर्णन है उसका। फिर वो जुलूस जो है वो पीली पोखर पहुँचता है। हाँ, पीली पोखर पहुँचता है तो पीली पोखर में आप पीली पोखर गए आप लोग ना, उसके सामने ही श्री जी का महल है। मानो महल जो है मंदिर जो श्री जी का है, जो उनका घर है, वो एकदम सामने दिखाई पड़ता है। तो ये देखते हैं, अरे सखियाँ तो है, राधा रानी नहीं है इसके अंदर। तो विशाखा को नज़र से पूछते हैं, तो बोलते हैं महल में है। तो महल में क्या हो रहा है? राधा रानी रूठी हुई है किसी कारण से, मान कर रही है, और ललिता देवी उसको मना रही है। अरे ललिता मावरी राधा रानी श्री जी क्या कर रही हो अभी? देखो वो दूल्हा बनकर आ गए, कन्हैया नंदलाल आ गए, अभी तो रूठ के बैठी हुई है, मुझे उस पर यकीन नहीं, जाकर देख ले खिड़की से। तो बड़ी मुश्किल से जाकर देखती है खिड़की से, तो कन्हैया जी खड़े हैं। जैसे राधा रानी झरोखे में आती है तो ये पिचकारी खोलते हैं और वहाँ से ही पिचकारी मारते हैं, लेकिन वो पिचकारी जो है वो उधर तक पहुँचती नहीं है, दूर पड़ती ना वो बहुत। लेकिन कहते हैं कि पिचकारी नहीं पहुँची, लेकिन भाव तो पहुँच गया। भाव पहुँचते ही राधा रानी का मान दूर हो गया। उतने में विशाखा पहुँच गई, अरे उन्होंने बोला है किधर हो तुम? तो फिर ललिता विशाखा तुरंत झटपट से उनका श्रृंगार करती है। होली के अनुरूप रोज जैसा नहीं, होली में कैसा होता है ना, डिफरेंट ड्रेसिंग होता है। तो सज सज कर फिर उनको नीचे लाते हैं। तो यहाँ से सखियों का झुंड है और राधा रानी उसके बीच में है सब सामने, यहाँ सखाओं का झुंड है और बीच में कृष्ण है। तो फिर तय होता है कि अभी होली खेलेंगे। तो होली में दो प्रकार की होली होती है, एक सूखी होली गुलाल अबीर अलग अलग रंग उड़ाते हैं उसको, और एक है गीली होली पिचकारी वाली। तो अलग अपने अपने नियम होते हैं होली के, तो तय करते हैं कि पहले हम लोग सूखी होली खेलेंगे। अभी सूखी होली में गीली होली खेलने का कोई गुंजाइश नहीं है, सूखी होली का गेम हो गया फिर पिचकारी का खेलना है। तो सूखी होली चालू होती है और हमेशा सूखी होली में राधा रानी जीत जाती है और कन्हैया जी हार जाते हैं। कन्हैया जी बहुत चालू हैं, बहुत चटपटे हैं, जैसे हारने लगते हैं, जैसे हारने का समय आता है तुरंत पिचकारी निकाल के मार देते हैं राधा रानी के बिल्कुल मुंह की ओर। और राधा रानी भी कैसी है, बहुत होशियार है, उसको समझता है कि ये चालाकी कर रहे हैं, तो अपना हाथ आगे कर देते हो चेहरे से आगे, बराबर उसकी पिचकारी की जो धार है उसको रोक देते हैं। लेकिन पिचकारी की धार जो हाथ को लगती है वो हाथ से कुछ छींटा उड़कर गाल में गिर जाते हैं लाल रंग की, और लाल रंग के छींटा जो सुनहरे गोले गोरे गाल पर गिरते हैं इतनी सुंदर राधा रानी लगती है। तो ये बावड़े होते हैं और पिचकारी मारने के बाद ऐसा देखते रह जाते हैं, जस्ट गेट स्टंड ओवरवेल्म्ड, भावना भाव विभोर हो जाते हैं राधा रानी कहता सुंदर रूप देखकर। तो जैसे भाव विभोर होते हैं ये सखियाँ उनको ये चालाकी करने के लिए तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करके उनको दोनों हाथ मोड़कर पीछे लेके जाते हैं, टाइट पकड़कर गुनहगार बनाकर कहाँ ले जाते हैं, कौन सी अदालत में लेके जाते हैं? ललिता की अदालत में, क्योंकि तो ललिता जी उनकी बहुत तेज राधा रानी की रक्षक है वो। तो गुनहगार को लेके ललिता जी की अदालत में पहुँचते हैं, बोलो ये गुनहगार का क्या किया जाए, इन्होंने सूखी होली का गेम जो था उसको तोड़कर गीली होली का चालाकी किया है। तो फिर मुकदमे में तय होता है कि जो ऐसे गुनहगार होते हैं उनको मुंह भर काजल लगाया जाता है, उनका दुपट्टा छीना जाता है और उनको चुनरी उड़ाकर उनके पीछे एक नाम लिखते हैं जो मैं यहाँ कथा में बोल नहीं सकता। पीछे लिखते हैं, आपको मालूम है वैदवासियों को पता। तो ठीक है, फिर काजल आमतौर पे हम लोग ये उंगली से लगाते हैं ना, बहुत प्रेम से एकदम ऐसे लकीर लगाते हैं एकदम प्रेम से आंखों पर, लेकिन ये दंड वाला काजल ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे होता है पांचों उंगलियों से ऐसे मुंह पे लगाना होता है। तो राधा रानी को काजल लगा के देते हैं, राधा रानी दोनों हाथ डुबा दिए और ये बंदी बनाकर उसको हाथ पीछे मुड़ उड़ कर पीछे धक्का मारते मारते राधा रानी के सामने लेके जाते हैं। राधा रानी ऐसे मुंह पे लगाने वाली है तो ये मुंह फेर लेते हैं और उछाला के कर रहे हैं। तो दो सखियां आती है, मुंह को पकड़ती है ऐसे टाइट, कान पकड़ कर, हिलने का नहीं। फिर राधा रानी दोनों हाथ से काजल लगाती है। फिर वहां से सखी आती है और दुपट्टा खींच लेती है उसका। और फिर वहां से तीसरी सखी आती है, ये बड़ी चुंदरी जो है ऐसे डालकर उसको पूरा सखी बना देते हैं। ये लीला है होली की, जो रंगीली होली में होती है। एक भाग हो गया ये रे पीलील पोखर पर रंगी होली का आरंभ हुआ था। उसके आगे रंगीली होली में जब पहुंचते हैं सखा लोग तो सब सखियाओं को लट्ठा मारती है। एक बार बरसाने में होता है और कहीं नहीं होता है पारंपरिक दृष्टि से। तो सखा लोग आते हैं तो सखियाँ उनको डंडे से पीटती हैं, तो ढाल पकड़कर वो उसको झेलते हैं। आज भी वो लीला होती है और 10-10 दिन से तैयारी चलती है। वो लट्ठा जब उसको तेल पिला पिला कर मसाज करते हैं, लट्ठा को तैयार करते हैं, उसको तेल लगा लगा कर उसको तेल फिर पी लेता है वो, और तेल लगाते हैं फिर और पी लेता है फिर लगा देते हैं, सब बढ़िया लट्ठा बनाते हैं। फिर ऐसे भी रिवाज है कि नई नवीन जो दुल्हन है ना, जो ब्याही हुई है यंग गर्ल्स, उनको 15 दिन तक मेवा खिलाते हैं, घी खिलाते हैं गाय का तकड़ा बनाने के लिए। भी अच्छी लट्ठी मारना चाहिए ना फिर। हाँ, बहुत प्रेम से बड़ी बुजुर्ग जो गोपियाँ होती है वो जवान गोपियों को अच्छी तरह से 15-20 दिन तक मेवा खिलाती है, गाय का घी खिलाती है, पोषक खाना खिलाती है दष्ट पुष्ट करने के लिए। उनके कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं उनको दुल्हन बनाने के लिए, उस दिन इतना कोशिश होती है। और सखा लोग भी अपनी ढाल को बहुत तैयार करते हैं, कितना भी बड़ा घाव आएगा तो पकड़ सकते हैं उसको। ऐसे जोरों से तैयारी होती है। हमारे कैसे दिवाली में कैसे होता है, 10-15 दिन से मिठाई बनाना आरंभ होता है। वैसे यहाँ पर होली के दिन में दोनों नंदगांव में बरसाने में बहुत जोरदार तैयारी चल रही है, अभी भी चल रही है। और फिर नई नवेली दुल्हन जो है वो सब लोग सज सज कर जाते हैं और जोरदार लट्ठा फरार करती है। वो देखती नहीं कि धीरे से मारना है, जोरदार वो बचाना है उनको सब जगह पे। और कहीं लग गया लाठी समझो सर पे, घाव हो गया तो उसी की मिट्टी को, वहीं पर की मिट्टी को जाके सर पे लगाते हैं और घाव भर जाता है। और प्रशासन की तरफ से इतना इतना 4-4 इंची धूल जो है ना, वो मतलब रज जो है वो डाली जाती है, बाहर से लाकर ट्रक भर करके डाली जाती है। इतनी इतनी रज रस्ते पर होती है। और जो लट्ठामार होली वहाँ पर होती है तो उसके बाद में सारी धूल गायब हो जाती है। सब लोग उसको ले लेके जाते हैं महाप्रसाद के रूप में। ऊपर से वो जमीन पर गड्ढे खोद कर उसको उसको भी लेके जाते हैं। सब जमीन बहुत गड्ढे मिलेंगे आपको रंगीली होली की शाम को। ये रंगीली होली का लट्ठामार होली का इतिहास है। उसके बाद अगले दिन सखिया वहाँ पहुँचती है, वहाँ पर वो लट्ठामार होली थी नंदगांव, उसको होरंगा कहते हैं। उधर भी समाज होता है, इधर भी यहाँ पर बहुत सज धज के पहुँचते हैं और वहाँ के लोग आते हैं तो उनको भी वहाँ पर भी लट्ठा मार होती है, सखियाँ लट्ठा मार करती हैं और बड़ी मीठी मीठी गालियाँ देती हैं, कठोर ताने मारती हैं उनको। यहाँ पर तभी भी मारते हैं, वहाँ पर भी मारते हैं। नंद बाबा को ताने मारते हैं, यशोदा माता को ताने मारते हैं, सखियों को ताना मारती है, कन्हैया को मारते हैं। कन्हैया के जाति के बारे में प्रश्न पूछा करते हैं कि कौन सी जाति का है, कितनी माँ का बेटा है। उसको कहते हैं नोकझोंक। नोकझोंक जो है ना वो दो जो प्रदेशों के पंडा लोग हैं वो साथ में बैठते हैं एक दूसरे के, एक तरफ बैठते हैं बरसाने के साथ पंडा लोग, एक तरफ बैठे गोसाई गोसाई नंदगांव के, और आमने सामने होता है हम लोग कैसे अंताक्षरी खेलते हैं वैसे आमने सामने उनको गीत से झगड़ा करते हैं वो प्रेम से। ये गीत बोलेंगे तो सुहाग दूसरा गीत बोलेंगे, इतने पंडित है कि उनको सब गीत रेडी है उनके। आपने कुछ बोला उसके जवाब में गीत रेडी है। नंद बाबा की जाति निकाले तुरंत ब्रश्वान बाबा की जाति निकालते हैं। नंद बाबा की उम्र में ताना मार दिया, ताने के इतने बुढ़ापे में बच्चा हो रहा है क्या उसको हो गया, तो फिर ब्रश्वान बाबा की भी उम्र निकालते हैं। तुमको कितनी साल में लड़की हुई थी पूछो, हमने दर्शन किया उसका नोकझोंक का, बड़ा आनंद होता है बड़े। उसके बाद में फिर बहुत देर तक गाते हैं गीत, फिर गले मिलते हैं बड़े प्रेम से और फिर पुआ खिलाते हैं पुआ सब लोगों को। पुआ की विशेषता है होता ना, वो एक होता है माल पुआ, एक होता है खाली पुआ। वो पुआ महाप्रसाद सबको बांटते हैं, बहुत झूम झूम के नाचते हैं। ऐसा ये प्रेम का उत्सव है, उसको लोगों ने कितना विकृत बना के रखा है ना। तो हम लोगों को भी, हम लोग भी होली खेल सकते हैं। लेकिन होली का जो खेल है, जो अगर हम खेलना चाहते हैं, तो हम सबके मन में बड़ा आदर और प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, और बड़े प्रेम और आदर पूर्वक उनकी उनका सम्मान की रक्षा करते हुए, उनका आदर करते हुए, उनके मतलब किसी भी तरह से शील को भंग न करते हुए, किसी कन्या के सम्मान को भंग न करते हुए सम्मान पूर्वक उसको रंग अर्पण करना चाहिए। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को, ये भाव है उसके पीछे। अगर होना ही है तो आनंद होना चाहिए, प्रेम व्यक्त होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आमतौर पर होली नहीं खेलते हैं। क्या कारण है उसका? क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा भाव इतना गलत है, हमारे मन में कितनी वासनाएं हैं, हमारे मन में कितने गलत भाव हैं। साल भर किसी लड़के को देख के रखा है तो उसको भी हाथ लगाना है जाके होली के दिन, यही भाव से जाते सब लोग। जो साल भर संकोच में है वो होली का बहाना लेकर मस्ती करने को चले जाते हैं। मतलब जो उच्च प्रकार का प्रेम का प्राकट्य है वो इतना नीच होकर आज एक वासना के रूप में प्रकट हो रहा है। फिर पुलिस कंप्लेंट होती है, फिर जेल होती है, किसी को मारपीट होती है, क्या क्या होता है। क्योंकि जहां प्रेम होना चाहिए था वहां पर वासना प्रकट हो रही है विकृत रूप में। इसलिए हम लोग होली नहीं खेलते हैं। बचपन में खेलते थे, अच्छी तरह से खेलते थे, लेकिन आज अपने अयोग्यता को देखते हुए हम लोग होली नहीं खेलते हैं। और अगर खेलते ही हैं तो हाथ में रंग लेते हैं और बड़े प्रेम, दो उंगलियां यहाँ लगाते हैं और दो लुंगियां यहाँ लगाते हैं और दो लुंगलियां उसको लगाते हैं और गले मिलते हैं बड़े प्रेम से, बड़ों को वंदन करते हैं। इतना कर सकते हैं, इतना करते हैं, लेकिन उसके आगे जाकर जब आगे बढ़ते हैं तो प्रेम नहीं प्रकट होता, खाली वासना ही बाहर निकलती है। जो गंदगी अंदर की जो बाहर निकलती रहती है। इसलिए अब बड़े आचार्यों ने कहा है इसके बारे में कि ये भगवान की जो लीलाएं हैं, जो उत्कट लीलाएं हैं, बहुत अंतरंग लीलाएं हैं, इसको बड़े आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बस उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसका आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए कि हम उसके योग्य नहीं हैं, हम को सुन सकते हैं उसके बारे में, सुनकर उसका रस आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन उसकी नकल नहीं कर सकते हैं। हमारी नकल से हमारी वासना का भंडार फूट जाएगा, चारों ओर बहने लगेगा, और जब सुनेंगे तो हो सकता है वो जो पाप भरा वासनाओं का भंडार है वो शुद्ध हो जाएगा और हृदय मलिन मलिनता से शुद्धता की ओर जाएगा। इसलिए श्रवण करते हैं, नकल नहीं करते हैं उसकी। तो ये एक संक्षेप में मैंने कहा आपको, ये मौसम का सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे लिए क्या समझना है उसके बारे में। बेस्ट होली अगर आपको अनुभव करनी है तो आप लोगों को मिठाई बांटिए, हाथ में रंग लेकर जाइए और उनको जहाँ लगाना है उनको लगाने दीजिए। बस आप उन पर हावी मत हो जाइए, जबरदस्ती मत करो, उनका कुश्ती मत खेलो उनके साथ, रंग प्रकट कीजिए। जैसे हमारी बेटी की शादी जो है वो बसंत पंचमी के दिन हुई थी, तो हमने प्राकृतिक रंग मंगाए थे कई जगह से, अलग अलग रंग, कोई उसमें केमिकल कुछ नहीं था, फूलों के रंग मंगाए थे, बहुत दूर से, बहुत महंगे थे वो, अच्छे सुंदर पात्रों में उसको ठाकुर जी के सामने रखा था। और विवाह में जो लोग दूल्हा दुल्हन को मिलने आते थे उनके रास्ते में ही ठाकुर जी का विग्रह रखा था, मंदिर बनाकर, ताकि उनको ठाकुर जी को मिलकर ही आगे जाना है, ऐसे रखा था। और ब्रज के 40 किलो ऐसे गुलाब की पंखुड़ियाँ मंगाई थी, जो ब्रज से सुबह पर अगस्त क्रांति से आ गए थे, उसमें से छाट कर जो सुंदर पंखुड़ियाँ बची थी वो ठाकुर जी के सामने पूरा बिछा दिया था, उसको दो थाली में रखा था। और लोग ऐसी गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हैं वो ठाकुर जी को अर्पण कर रहे थे, और जो अलग अलग रंग वहाँ पर थाली पर रखे थे वो निकाल कर थाली ठाकुर जी को अर्पण कर रहे थे, चरणों में ऐसे ऐसे हवा में डाल रहे थे, और फिर जाकर दूल्हा दुल्हन को मिल रहे थे। और रात को जब विवाह समारंभ समाप्त हो गया तो वो जो महाप्रसादी रंग था वो दोनों पार्टियों ने ऐसे निकाल के ईश्वर के गले में लगाया। बस प्रेम की होली, कोई उसमें वो आतंक नहीं था किसी प्रकार का, जोर जबरदस्ती मस्ती, जिसको एलर्जी है उसको भी लगाना, उसको परेशान करना, फिर वो छींक रहा है रंग के एलर्जी की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम भी ऐसी आदरयुक्त होली खेल सकते हैं ताकि हमारी हृदय की शुद्धि हो। हाँ, ये उत्सव हम क्यों मनाते हैं, उत्सव क्यों मनाते हैं, उसको मैं कथा क्यों सुनते हैं, ताकि हमारे हृदय की शुद्धि हो। ये नहीं कि हम लोग एकदम ऐसे गलत व्यवहार करके अपने आत्मा को अशुद्ध करके मलिन करें, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया होली का उत्सव। फिर ये होली चलती रहेगी, नवमी से लेकर दसवीं, 11 रंग भरनी एकादशी, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा आएगी। और पूर्णिमा के दिन फिर धूलिवंदन होगा। उसका महात्म्य भी यही है कि ये रज जो है, ब्रज की इतनी महान है, इतनी गुणकारी है, इतनी महिमावान है, कि इसको वो दिन सर पे लगाते हैं, उसका पूजन किया जाता है। और उसी दिन हमारे यहाँ पर गौरांग महाप्रभु का जन्म होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। कितनी महान चीज़ है, देखो आप। अभी सुबह मैं उस स्थान पर गया था ना, माता जी को लेने का मैंने प्रयास किया था, माता जी नहीं आ सकी। वो जगह का नाम है इमली तालाब, और इमली तालाब में बहुत सुंदर लीलाएं हुई हैं। एक लीला उसमें होली से संबंधित है, वो ये है कि भगवान ने रास रचाया बंसीवट पे, तो सभी गोपियों के साथ में एक एक करके कृष्ण ने रूप धारण किया, है ना। जितनी करोड़ों गोपियां थी, उतने हर एक के साथ एक गोप एक कृष्ण थे। तो वो इतने मग्न थे नाच में, तो सब गोपियों को लगा कि देखो मैं कितनी स्पेशल हूँ, श्री कृष्ण सबको छोड़ करके अकेले मेरे साथ नाच कर रहे हैं। वो इतनी मग्न है कि उनको आजू बाजू में दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है, उनको तो कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे हैं। और ये महसूस हो रहा है कि कृष्ण मेरे साथ में है। बाद में पता चलता है कि केवल मेरे ही साथ में है। बाद में पता चलता है कि मैं कितनी स्पेशल हूँ कि सबको छोड़ के केवल मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। और ऐसा हर गोपी को लग रहा था, राधा रानी को भी लग रहा था। तो थोड़ा सा उसमें अहम पैदा हो गया कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, इसलिए सबको छोड़कर मेरे साथ में नाच रहे हैं। उनको पता नहीं कि सबके साथ में, लेकिन सबको यही भावना हो गई। जैसे ही सबको भावना हो गई तो कृष्ण अंतर्धान हो गए, क्योंकि तो उनको अहंकार अच्छा नहीं लगता है, गर्व अच्छा नहीं लगता है। तुरंत सब लोग बोलने लगे, अरे पता है, सुनी रही तुमने, मेरे साथ में नृत्य कर रहे थे। तो भी कह रहे थे मेरे साथ भी नृत्य कर रहे थे। तीसरी कह रहे मेरे साथ भी नृत्य कर रहे थे। करोड़ों गोपियां कह रहे कि मेरे साथ भी थे। तब उनको समझ में आया, अरे वो सबके साथ थे, हमने बेकार में गर्व किया। इतना अच्छा समय था हमारा, वो बेकार में मन की भावना से खो दिया हमने। अभी क्या करें, अभी खो तो दे दिया, अभी चले गए, वो अंतर्धान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर लताओं को पूछ रहे, पताओं को पूछ रहे, झाड़ डालियों को पूछ रहे, शाखाओं को पूछ रहे, तुमने कहीं कान्हा को देखा है, हमारे रास बिहारी को कहीं देखा है तुमने? तो सब परेशान है, वन्य देवताओं से पूछते हैं, हाँ ग्राम में देवताओं से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, पुकारते हैं, पुकारती चली गोपी, पुकारते जा रहे हैं। उतने में कृष्ण चले जाते हैं। उनको भी गोपियों का विरह अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गर्व भी अच्छा लगता नहीं उनका। तो जाकर बैठ गए इमली तालाब पेड़ के नीचे, जहां पर आपको ले जाएंगे। और वहां पर उनको उनसे रहा नहीं गया, तो राधा रानी के चरणों पर ध्यान किया उन्होंने, और राधा रानी के प्रेम पर चिंतन किया। मन में राधा रानी के चरण कमल और चिंतन राधा रानी के नाम का, राधे राधे राधे, द्वय अक्षरी मंत्र को पुकारते रहे वो। कालिंदी तटम कुंद मंदिर गतो, हाँ, दो चरणों पर राधा रानी की ध्यान करके बैठे हुए हैं। इतना गहरा ध्यान करते हैं कृष्ण उनकी याद में, कि सांवले रंग के कृष्ण जो है वो गौर वर्ण के बन जाते हैं, राधामय बन जाते हैं। हम तो केवल कथा ही कर सकते हैं, राधामय बनने का मतलब क्या है किसको मालूम है। सांवले रंग के कृष्ण जो है गौर वर्ण के, स्वर्ण कांचन रंग के बन गए वो। इतना गहरा ध्यान था उनका। अभी तो पीताम्बर पहने हुए, मुकुट धारण किए हुआ है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है ना, वनमाला पहने हुई है, सब कुछ है, बांसुरी हाथ में रखे हुए हैं, और रंग केवल स्वर्ण कांचन का है। वहां से फिर वन वन में भटकती हुई सब गोपियां राधा रानी के नेतृत्व में रोती 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 आती हैं, और देखते हैं, अरे इस पेड़ के नीचे कौन बैठा है? देख लगता तो कृष्ण जैसा है, लेकिन सांवला तो है नहीं, मोर पंख भी है, पीतांबर भी है, सब कुछ वनमाला पहने हुए है, जैसे पहना था वैसे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सांवला रंग नहीं है, गौर वर्ण की है। ये क्या रहस्य, चर्चा कर रहे हैं। जो राधा रानी कहते हैं मैं जाके देखती हूँ, वो धाड़स करती है, आगे जाके उनको स्पर्श करती है। जैसे ही स्पर्श करती है, उनका सांवला रंग धीरे 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 उतर जाता है, नहीं, गौर वर्ण उतर जाता है, और दोबारा सांवला हो जाता है, और धीरे से वो आंखें खोलते हैं। तो राधा रानी पूछती है ये क्या रहस्य है, ये कभी देखा नहीं था पहले, ये कैसे हुआ? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे विरह में मैं तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था, तुम्हारे नाम का मुख से जप कर रहा था, मन में तुम्हारे ही चरण कमल थे, उस पर चिंतन कर रहा था मैं, तो उसमें मुझे इतना आनंद आया, उतना आनंद आया, तो उसमें मेरी यह अवस्था हो गई। मुझे पता नहीं, आप बता रही हो, मैं तो जानता नहीं था, मैं तो, मेरी आंखें बंद थी, मेरा रंग क्या हुआ था मुझे क्या पता, लेकिन आप बता रही हो तो इसका रहस्य यह है कि मैं आपके बारे में विचार कर रहा था, और आपके विषय में चिंतन और आपके नाम का जप करते हुए मुझे इतना आनंद आया कि मैं अभी वादा करता हूँ आपसे, मैं एक पूरा अवतार लूँगा, पूरा अवतार लूँगा, एक सेपरेट, जैसे रावण को मारने के लिए एक पूरा अवतार खर्च किया उन्होंने, राम राम का, कंस को मारने के लिए कृष्ण बनकर आए, वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान बनकर आए ना, एक एक अवतार उन्होंने उसमें दे दिया है। एक अवतार दूंगा मैं उसके लिए, आपके प्रेम का रहस्य समझने के लिए। तो राधा रानी कहती है, अरे मेरा भाव आप अनुभव करना चाहते हो, जो मेरा मन में आपके प्रति जो भाव है उसको आप अनुभव करने की इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो मैं बहुत चिंतित हूँ इस विषय में कि जब तुम मेरा भाव लेकर अवतार लोगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से गिरोगे, भाव विभोर होकर पत्थर में गिरोगे, कंकड़ में गिरोगे, पानी में गिरोगे, शाखाओं से गिरोगे, अपने आप को जख्मी करोगे, मुझे ये विचार भी सहन नहीं हो रहा है कि आपकी क्या अवस्था होगी हमारा भाव लेने के बाद में। इसलिए जब आप अवतार लेकर आएंगे तो मेरी कांति से मैं आपको पूरा ढक दूंगी, ताकि कहीं भी गिरोगे तो मेरी कांति आपको बचाएगी, आपकी कांति को कष्ट नहीं होगा। इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, राधा का भाव लेकर कृष्ण आए और राधा ने अपने कांति से उसको ढक दिया पूरा, इसलिए वो गौर वर्ण बन गए। गौर कृष्ण कहते हैं उनको, या अकृष्ण कृष्ण कहते हैं, अकृष्ण यानी जो सांवले नहीं है वैसे कृष्ण है वो, कृष्ण वर्णम त्विसा अकृष्ण अकृष्णम सांगो पंगाश्र पार्षदम, कृष्ण वर्णम त्विसा यानी चमड़ी त्वचा, अकृष्णम उनका त्वचा जो है वो कृष्ण नहीं है, त्वचा जो है गौरवर्ण है। तो ये ऐलान जो है कि मैं आऊंगा गौरांग महाप्रभु, वो इमली तला में हुआ था, इतना सुंदर जगह है। तो वो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है वो गौर पूर्णिमा यानी हमारे धूलिवंदन के दिन में हुआ है, वो भी संध्या के समय, हाँ मायापुर चंद्र, मायापुर के क्षितिज में एक चंद्र का उदय हुआ, सूर्योदय के सूर्यास्त होने के बाद में चंद्र का उदय उदय के समय नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु यानी गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ, और नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ इसलिए निमाय नाम रखा गया उसका, भविष्य बनाया गया उनका, बताऊंगा आपको गौर पूर्णिमा की कहानी बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम जो है, जो गोपियों का है, जो राधा रानी का है, वो श्री कृष्ण अनुभव करना चाहते हैं, और अनुभव करने के लिए एक पूरा 48 साल का अवतार का समय देते हैं, और केवल उस प्रेम को न केवल देते हैं, लोगों को बांटते भी हैं, उसका वितरण करते हैं। और एक विशेष बात है उसमें, वो ये है कि रास में तो उन्होंने केवल गोपियों को प्रवेश दिया था, लक्ष्मी तक को प्रवेश नहीं दिया उन्होंने, शिवजी को भी गोपी बनकर प्रवेश दिया, पुरुष रूप में प्रवेश नहीं दिया, सब जानते हैं आप लोग, इतना प्राइवेट लिमिटेड मामला था वो, यशोदा मैया नहीं थी उसके अंदर, नंद महाराज नहीं थे, उपनंद बाबा नहीं थे उसके अंदर, कोई नहीं था उसके अंदर, केवल सखियां थी उसके अंदर, केवल गोपियां थी, करोड़ों गोपियां थी, केवल गोपी गोपी वर्ग और कोई वर्ग नहीं था उसके अंदर। और रासलीला को कहा गया है कि वो श्री कृष्ण भगवान अपने प्रिय जीवों के प्रति कितना प्रकट कर सकते हैं, वो सर्वोच्च आनंद जो है रास में प्रकट होता है, भगवान अब एक जीव को कितना उच्च अनुभव दे सकते हैं प्रेम का, वो सर्वोच्च अनुभव जो है वो रास के माध्यम से प्रकट करते हैं, उतना तो अनुभव उन्होंने माँ को भी नहीं दिया है, वो जो प्राइवेट सर्वोच्च अनुभव है, अभी बात बराबर सुन लीजिए आप, वो जो सर्वोच्च अति उत्कट गोपनीय आनंद है वो उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से इस अवतार में सब लोगों के लिए प्रकट किया, जो आनंद सीमित था वो खोल दिया उन्होंने, दरवाजे खोल दिए, वहां पर दरवाजे पर सखिया खड़ी थी, कोई प्रवेश न करे इसके अंदर। बाद में गोपेश्वर को खड़ा किया शिव जी को, कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए, खाली जो योग्य है वही आएंगे। वो दरवाजा भगवान ने इस अवतार में सबके लिए खोल दिया। पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान, कोई योग्य है कोई नहीं है इसको ना देखते हुए जो भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा उनको वही रास का आनंद प्राप्त होगा। मन लगाकर भाग लेगा, नृत्य करेगा उसके अंदर, तो उनको रास लीला में जो गोपियों को आनंद हुआ है वो प्राप्त होगा, ऐसा वादा किया उन्होंने। और उदार हृदय से ये सारा प्रेम लोगों को बांट दिया उन्होंने। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से रास का आनंद कलयुग के लोगों के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। सो मर्सीफुल इज द लॉर्ड, कितने दयालु है भगवान। जो कभी भगवान ने किसी भी अवतार में प्रकट नहीं किया उतना उदारता भगवान ने इस अवतार में दिखाया। तो वही कृष्ण है जब, लेकिन गौरांग महाप्रभु जब बनकर आते हैं तो वो इतने सख्त नहीं होते जितने कृष्ण में होते हैं। कृष्ण कैसे हैं, सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं। अरे उनकी तो पैरों की नाखून में से जो अनंत किरणें निकलती है उसमें से एक किरण भी किसी को दर्शन नहीं होता है। ध्यानी मन ध्यानी तपी हाँ योगी सब प्रकार के लोग अनंत जन्म तक तपस्या करते हैं, उनको भी एक किरण दिखाई नहीं पड़ती है, फिर भी इतनी दुर्लभ है वो। वो कृष्ण स्वयं इतने दुर्लभ है, उनका प्रेम तो दूर ही रह गया, उनका संबंध होना तो और दूर हो गया। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इस रूप में वो जा जाकर संबंध करते हैं, जा जाकर हरिनाम बांटते हैं, जा जाकर लोगों को हरिनाम संकीर्तन में खींचते हैं और रास का आनंद देते हैं। इसलिए कहते हैं पात्रे अपात्रे ना देखिला, कोई पात्र है कि अपात्र है वो भी देखा नहीं है, कोई जगह सही है कि गलत जगह है वो भी नहीं देखा है। सब जगह पर रस्ते में, घर में, घर के बाहर, आंगन में, पहाड़ में, सन्यासी में, ब्रह्मचारियों में, गृहस्थों में, घर में, आंगन में, सब जगह पर उन्होंने झूम झूम कर रास किया है। जैसे ब्रज में सब कण कण में रास लीला रचाई है उन्होंने। शुरुआत किया था बंसीवट पे, लेकिन अभी ब्रज में हर जगह पर रास मंडल बना हुआ है, सब जगह रास किया उन्होंने। उस तरह से गौरांग महाप्रभु के रूप में मायापुर में और जगन्नाथपुरी में, दक्षिण भारत में सब जगह रास प्रकट किया हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो आचार्य क्या बोलते हैं, गौलकर प्रेम घन हरिनाम संकीर्तन। और हमारी रति उसमें नहीं होगी तो हम कितने दुर्भाग्य हैं, ऐसे बोलते हैं। अरे गौलोक का आनंद जो है, सर्वोच्च आनंद जो उन्होंने रास में प्रकट किया यहां पर आकर द्वापर में, वो कली में हरिनाम संकीर्तन के रूप में सबके लिए प्रकट किया। लेकिन मुझे क्यों रति नहीं उसके अंदर, क्यों प्रेम नहीं उसके अंदर, क्यों आसक्ति नहीं है, मेरा मन क्यों भटक रहा है, क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है उसमें, ऐसे वो संत लोग पुकार रहे हैं हमारे लिए, हमारी भावना से पुकार रहे हैं। हम लोग उसमें रुचि लेते नहीं है। जब झगड़ा होता है तो हम कितने जोर जोर से बात करते हैं, भगवान का नाम लेने पर तो कंठ से बाहर ही निकलता नहीं। ये हमारी दुर्भाग्य की गति है। ऐसे समय बोलना पड़ता है, झगड़ा क्यों कर रहा, आवाज जरा कम बोलो, कम बोलो, बच्चा सो रहा है हमारा, ऐसे बोलना पड़ता है। और जब कीर्तन में भाग लेने का समय आता तो कीर्तन में आवाज निकलता नहीं, खाली मृदंग और करताल का ही बजता है, कंठ वाला आवाज तो निकलता नहीं। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। जब सर्वोच्च प्राप्ति हमारे जीवन में हो रही है तब भी हम उसमें भाग लेने में कंजूसी कर रहे हैं। जब दुनिया भर का सर्वोच्च धन बट रहा है तो हम लेने को ही नहीं जा रहे, दूर खड़े रहे, ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये गौर पूर्णिमा का रहस्य है। और गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेते हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में। और यही पीली पोखर जहाँ पर होली होती है, उसी पीली पोखर में जो पीली हो गई राधा रानी के हाथ धोने के बाद में, तो कृष्ण स्वयं व्याकुल होकर आए हैं और पीली पोखर के जल में उतरे हैं तो वो भी पीले हो गए पूरे। सब सुंदर चित्रपट है, उसमें वो पीली पोखर में उतर रहे हैं और जितने उतरे हैं वो भाग पीला हो गया है, जो उतरना बाकी है वो नीला है। जब घुस जाते हैं तो भी पीला हो जाता है पूरा। और वो प्रश्न कर रहे हैं, पीला रंग क्या है, पीला रंग क्या है। राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो पीले रंग के रूप में उन पर छावी हो रहा है पूरा। तो उधर भी उन्होंने ऐलान किया है, जब वो स्वयं पीले हो गए, स्वर्णमयी हो गए, पूछते पूछते कि क्या रंग है ये, उधर भी ऐलान किया कि मैं इसी भाव को अनुभव करने के लिए आऊँगा। और वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। बाह्य दृष्टि से वो उन्होंने ब्रज को प्रकट किया, लोगों को हरिनाम बांटा, भक्त बना दिया लोगों को। और आंतरिक दृष्टि से वो पूरे काल में राधा रानी के प्रेम को अनुभव करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि राधा रानी जो प्रेम करके अनुभव करती है तो उनको कैसे मालूम हो क्या हो रहा है, उनको अपना अनुभव हो रहा है, लेकिन राधा रानी के मन में कैसा लाभ हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, वो उसको पता नहीं है। वो अनुभव करने के लिए राधा और रानी जैसे बनकर वो आए और अनुभव किया। बड़े रहस्य की बात है, सबको समझ में नहीं आती है। तो हम लोग होलियों होली के समय दोनों तरफ से उत्सव मनाते हैं, एक रंग का उत्सव भाव से और एक गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव का रहस्य समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे हम लोगों को थोड़ा केवल धन्यवाद देना चाहिए भगवान का कि हम पर इतनी कृपा हो रही है, भगवान की इतनी कृपा बरसा रहे हैं। हम लोग पात्र हैं अपात्र हैं, कहाँ रह रहे हैं, वो योग्य है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। इन सब लोगों का लाभ, सब चीज़ों का अपने को हो रहा है, ये हमारा भाग्य है। और इस भाग्य की तो कहते हैं ना अनुभूति जागरूक रखनी चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज अवेयर एंड अलर्ट अबाउट द फैक्ट दैट वी आर सो फॉर्चुनेट। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग इतने भाग्यवान हैं, ब्रज में हैं, ये सारे रहस्य की बातें हमारे सामने भगवान खोल रहे हैं हमारी योग्यता ना होते हुए। इसलिए हम लोग ऋणी कृतज्ञ होना चाहिए, यू शुड बी ग्रेटफुल। जब ऐसा भाव रखेंगे तो उस कृतज्ञता के पात्र में कृपा भर जाएगी। कृतज्ञता का पात्र नहीं है हमारे पास तो कृपा नहीं प्राप्त होती। जब हमारे पास जो मिल रहा है भगवान का कृपा, भगवान का जो इंट्रोडक्शन या परिचय मिल रहा है हमको, उसके लिए हमें कृतज्ञ अगर नहीं है तो उनकी कृपा हम तक नहीं पहुंच सकती है। अगर वो हम कृतज्ञ हैं, बहुत धन्यवाद की भावना में हैं, तो हमारा हृदय कृपा से भर जाएगा। कृतज्ञता होनी चाहिए, इसलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं, वो नम्रता और कृतज्ञता निर्माण करने के लिए। वी वॉन्ट टू कल्टिवेट दैट ह्यूमिलिटी। तृणादपि सुने चेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। जिस व्यक्ति को निरंतर मन के आंगन में हरिनाम संगीतन गूंजता रहे ऐसी इच्छा है, उनको नम्रता अपनाना ही पड़ेगा। दूसरों को आदर देना होगा, अपने लिए आदर की अपेक्षा नहीं करनी होगी, सबको आदर देना होगा, चाहे वो काला हो गोरा हो छोटा हो बड़ा हो, हमसे बैठ हमसे आगे हो हमसे पीछे हो, एक जीव के दृष्टि से भगवान के अंश के दृष्टि से सबका आदर करना चाहिए। बेसिक आदर, हाँ मूलभूत आदर जो है एक चूहे और बिल्ले और पंछी के प्रति भी होना चाहिए, भगवान का अंश है। इस भावना से जब वैसा आदर होगा और भगवान के द्वारा भेजे गए स्थितियों को सहन करने की शक्ति होगी और सबके प्रति नम्र भाव होगा, तो ही वो जीव अपने हृदय के आंगन में हमेशा हरिनाम गूंजता हुआ अनुभव कर सकता है। प्रयास नहीं, अपने आप। सुबह उठेंगे तो मन में हरिनाम गूंजता रहेगा, काम कर रहे हो दिन में तो मन में हरिनाम गूंजता रहेगा, ये उस स्थिति का प्रमाण है। अगर आपको इस तरह से हरिनाम गूंजते हुए अनुभव होता है तो आपका जीवन धन्य है। कीर्तनीय सदा हरि, दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू अचीव। उठते बैठते जागते खाते पीते सोते हमारे मन में हरिनाम गूंजते रहना चाहिए। गोपियाँ ऐसी भाव में थी, पाती पाती पे शाम, डगर डगर में शाम, कण कण में शाम, इत देखूं उत शाम, सब जगह शाम ही शाम दिखाई पड़ते थे उनको, और कुछ दिखता ही नहीं था उनको, क्योंकि वो नम्र थी बहुत। उन्होंने भगवान के विरह में बहुत कुछ सहा था और सब भगवान के भक्तों का वो आदर करती थी। वो इतनी सरल थी कि अपने लिए कभी आदर की अपेक्षा उन्होंने कभी किया ही नहीं कि मेरा कोई आदर करे। इतना अपने आप को छोटी मानती थी कि क्या मैं आदर के योग्य तो हुई नहीं, सबका आदर करती थी। इसलिए उनके मन के अंदर शाम बसे थे, आंखों में शाम बसे थे, कान में शाम बसे थे, जिह्वा पर शाम बसे थे, और कुछ नहीं था उनके जीवन में, एक ही शाम, शाम रंग में, शाम रंग में ऐसी भीगी शाम भई मैं शाम। कैसे शाम की याद में मैं भीग गई हूँ कि मैं खुद ही शाम हो गई हूँ, मुझ में उस पर कोई अंतर नहीं, एक रूप हो गए हैं भाव से। तो ये स्थिति जो है जिन गोपियों की हुई थी उनके देश में हम रह रहे हैं, जिनके चरणों से ये भूमि पवित्र हो गई है, ऐसे गोपियों के देश में हम लोग निवास कर रहे हैं। कितनी भाग्य की बात है, वो सोचना चाहिए। जिन गोपियों पर भगवान ने जीवन निछावर करके डाल दिया, क्या बोला भगवान ने, न पा रहे हम। भगवान ने कहा कि आपका प्रेम का ऋण जो है उसको मैं चुका नहीं सकता किसी भी कीमत पर। हो सकता है मैं गौलोक गौलोकेश्वर हूँ, हो सकता है मैं वैकुंठ अधिपति हूँ, हो सकता है अनंत लक्ष्मी मेरी सेवा करके मैं इतना धनवान हूँ, लेकिन आपके प्रेम को लौटाने की, क्या कहते हैं उसको, प्रेम के प्रतिसाद में आपको संतुष्ट करने की शक्ति मुझ में नहीं, इसलिए आप जो मुझ पर प्रेम कर रही हो उसी में संतुष्ट रहो। न पा रहे हम, मैं आपको प्रेम को, प्रेम का कर्ज चुका नहीं सकता आपका। कौन कह रहे हैं पता है आपको? सर्वलोकाधीश्वर कह रहे हैं ये, जिनके सारे लोग, सारे लोग उनके खुद के हैं, इतने अमीर है वो भी गोपियों के प्रेम के सामने गरीब नजर आ रहे हैं। उन गोपियों के देश में हम रहते हैं, हमें गर्व करना चाहिए उन पर, उनको मन में पूजना चाहिए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो गोपियों का नाम लेकर हाथ में उनका जप करते थे, ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपकलता, उनका नाम लेकर जप करते थे और उनका नाम लेकर रोते थे। वो इतने सख्त सन्यासी थे, कठोर सन्यासी, कि स्त्री के जूतों को भी देखते नहीं थे वो, इतने कठोर थे वो सन्यासी, लेकिन फिर भी स्त्री नाम लेते थे, चंपकलता ललिता विशाखा। आप कह रहे ये क्या है, एक तरफ सन्यासी इतना कठोर है और एक तरफ लड़कियों का नाम ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे कठोर सन्यासी भी जानते थे कि गोपियाँ किस स्थिति में थी और कैसे भगवान भी उनके सामने विवश हो गए उनके प्रेम के सामने। वो गोपियों का उत्सव है ये होली, हम तो खाली देख सकते हैं उसको, हरे कृष्णा। इसलिए हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, उनके नाम का जप कर सकते हैं। जब नाम का जप करके हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारे हृदय में वैसा प्रेम आएगा जैसा गोपियों में था, तो हम होली खेलने के लिए योग्य हो जाएंगे, नहीं तो देखना भगवान से अच्छा है। हमारे मंदिर में क्या होता है, राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में होली हम खेलते ज़रूर है, लेकिन ठाकुर जी के साथ खेलते हैं, पिचकारी ठाकुर जी के विग्रहों पर मारते हैं, लेकिन बाकी लोगों के साथ में होली नहीं खेलते। जो भी रंग होता है वो सब लेके आते हैं, ठाकुर जी को लगाते हैं, पिचकारी लेके आके ठाकुर जी को फूलों को रंग से होली खेलते हैं, लेकिन फिर मंदिर में आकर एक दूसरे को लगाते नहीं, क्योंकि पता है कि हम लोग कितने पतित हैं, हमारे अंदर कितनी वासना है, तो इतना उच्च खेल खेलने के लिए हम योग्य नहीं हैं, इस भाव से खेलते हैं। तब जाकर हृदय शुद्ध होगा, जब हमारे अंदर ऐसी भावना होगी तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो धीरे धीरे हम उसको समझने में काबिल हो जाएंगे कि क्या चीज़ क्या है होली, क्या रहस्य है उसका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।